अध्याय छः श्लोक संख्या छः सात और आठ मुझे तीन के ऊपर कहने के लिए कहा गया है। तो प्राय पंचम स्कंद के अंदर जितने भी श्लोक आप देखेंगे ये सब गद्य के रूप में है, इनको गाया नहीं जा सकता है, इनको बोला जा सकता है। तो इसका अर्थ और अनुवाद और तात्पर्य मैं पढ़े देता हूँ जिससे कि कथा को व्यास करने में थोड़ा सा मुझे समय और मिल जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा कुछ भगवान ऋषभ देव के जो कार्यकलाप हैं उनके ऊपर बोल के आपका कुछ चित्त प्रसन्न कर पाऊं, कुछ आपको रसास्वादन दे सकूं। तो ये श्लोक संख्या छह है, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। अथ तत्पश्चात एवं इस प्रकार से अखिल लोकपाल ललाम इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं के प्रमुख अपि यद्यपि विलक्षणे विभिन्न जड़वत जड़ सदृश अवधूत वेशभाषा चरिते अवधूत के वेश उसकी भाषा तथा आचरण से अविलक्षित भगवत प्रभाव भगवान के ऐश्वर्य को छिपाते हुए अपने को सामान्य पुरुष की तरह रखते हुए योगिनाम योगियों का संपराय विधिमा इस देह के त्याग की विधि अनुशिक्षयन सिखाते हुए स्वकलेवरम अपने शरीर को जो किंचित मात्र भौतिक नहीं था जिहासु सामान्य मनुष्य की भांति त्यागने की इच्छा से आत्मनि आदि पुरुष वासुदेव में आत्मनम अपने आप भगवान विष्णु के आवेश अवतार बोलिए होने से ऋषभदेव स्वयं को असम व्यवहितम माया के व्यवधान के बिना अनर्थ अंतर्भावेन विष्णु पद में स्वयं अनवीक्षमाण सदैव देखते हुए उपरत अनुवृत्ति ऐसा दिखा रहे थे मानो अपना भौतिक शरीर त्याग रहे हों। उपराराम राजा के रूप में इस लोक की लीलाएं छोड़ दी। इसका अनुवाद भगवान ऋषभदेव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे किंतु अवधूत का भेष तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हों। फलतः कोई उनके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया तो भी वे वासुदेव कृष्ण के अंश रूप बने रहे। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस संसार में भगवान ऋषभदेव के रूप में की गई लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देह को त्याग सकता है तो उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। तात्पर्य जैसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब कोई परमेश्वर का शाश्वत दास बन जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी तथा साथ ही साथ परमेश्वर दोनों की स्वाभाविक स्थिति को समझे। दोनों को एक ही आध्यात्मिक रूप है। इस संसार में परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर ही पुनर्जन्म से बचा जा सकता है। यदि मनुष्य अपने को आध्यात्मिक रूप से ठीक रखे और अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता रहे तो इस भौतिक शरीर का त्याग करते समय उसे सफलता मिलेगी। ये छठा श्लोक है। इसके बाद सातवां, मैं इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा और आठवें का भी। वास्तव में भगवान ऋषभदेव के कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया से वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने वैसी मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाट प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कोंक वेंक तथा कुटक पड़े। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। जब वे भटक रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। यह अग्नि वायु से झकझोरे गए पांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्मसात हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। वास्तविकता में जब मनुष्य का बहुत सौभाग्य उत्पन्न होता है और भगवान की बहुत महती कृपा होती है उसके ऊपर, तब उसको साधु संग और ये भगवत कथा प्राप्त होती है। पंचम स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्थान लीला का वर्णन करने का एक बहुत सफल प्रयास किया है। द्वितीय स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवतम में जो 10 विषय हैं उनका वर्णन किया गया है, उसमें से पंचम स्कंद के अंदर स्थान लीला का वर्णन किया जा रहा है। और पद्म पुराण के महात्म में श्रीमद् भागवतम की जो संरचना है कि किस किस प्रकार से कौन से स्कंदों में किस किस विषय का वर्णन है, ये श्रीमद् पद्म पुराण के अंदर बताया गया है। उसमें बोल रहे हैं कि पादो यदि यो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजांतरम दो युगलम तथान्यो कंठस्तुराजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम और एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोपि यस्य द्वादशेव भाति। ये द्वादश स्कंदों का वर्णन पद्म पुराण के अंदर महात्म्य में बताया गया है कि पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है वो श्री भगवान के दो चरण हैं। तृतीय तुरियो कथितो यदुरु, तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है वो भगवान की जांघे हैं। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, नाभि जो है वो भगवान का पंचम स्कंद है और षष्ठो भुजांतरम द्वयुगलम, षष्ठ जो षष्ठम स्कंध है, छठा स्कंध है, भुजांतरम यानी कि भुजाओं के मध्य का भाग यानी कि वक्षस्थल है। तथा कंठस्तु राजन नवमो यदीय, कंठ जो है वो भगवान का वो नवम स्कंद से उसकी तुलना की गई है। और मुखार विंदम दशमम प्रफुल्लम, भगवान का जो मुखार विंद है जो स्मित मुस्कान से भरपूर है, उनको देखकर किसी का भी चित्त जो है वो आकर्षित हो जाता है, ऐसी स्मित मुस्कान से जो परिपूर्ण भगवान का मुख है वो दशम स्कंद है। और बोल रहे हैं एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, जो ललाट है वो भगवान का एकादशम स्कंद है। और शिरोपियत द्वादश एव भाति, जो मस्तक भाग है ये द्वादश स्कंद है। तो अलग अलग तरीके से एक एक स्कंद के अंदर एक एक अंग का वर्णन किया गया। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं, पंचम स्कंद में जब पहुंचे तो स्थान लीला का वर्णन करते हुए बहुत सफल प्रयास किया है सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को बताने का कि जब श्री भगवान अपने भक्तों का संरक्षण किसी मर्यादा में करते हैं, किसी मर्यादा में रहकर जब अपने भक्तों का पालन करते हैं उसको कहा जाता है स्थान लीला। और जब मर्यादा से बाहर निकलकर कृपा के बल पर भक्तों का संरक्षण करते हैं उसको कहा जाता है पोषण लीला यानी कि छठा स्कंद। तो मर्यादा में रहकर जब भक्तों का पोषण किया भगवान ने, तो श्री गोविंद ने जिस प्रकार से ये किया है, बहुत पंचम स्कंद के अंदर विजय रूप में इस बात की गाथा गाई गई है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जिन्होंने सकाम कर्म किए हैं, हाँ सकाम कर्म करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको किस चीज की प्राप्ति होगी, उसके बारे में बताया गया कि सकाम कर्म करने वालों को जब शरीर देह त्याग छोड़ देंगे, जब शरीर छोड़ देंगे तो उनको भूलोक से ऊपर स्वलोक और स्वर्गलोक इनकी प्राप्ति होगी। इसके बाद में जिन्होंने निष्काम कर्म किए हैं और गृहस्थ आश्रम को नहीं भोगा है, हाँ उनके लिए बताया गया है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, गृहस्थ आश्रम नहीं भोगा है, निष्काम कर्म किया है, उनके लिए स्वर्ग से ऊपर स्वर्गलोक और स्वलोक से ऊपर जो महर और जनलोक है उनकी प्राप्ति उनको होगी। ये स्थान लीला का वर्णन है। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके पत्नी के साथ नहीं रहे हैं और पूर्ण रूपेण वैराग्य का जीवन उन्होंने जो है वो बिताया है, तो इनको महर लोक और जनलोक से भी ऊपर जो है वो तप लोक में जाके विराजमान होंगे सारे। और अंत में जिन्होंने भक्ति योग का पालन किया है निष्काम रूप से, उनको तो सीधे के सीधे मोक्ष या फिर भगवान की सीधे चरण कमल की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंचम स्कंद के द्वारा जितना भी वर्णन है, पंचम स्कंद ने नरक लोकों का वर्णन है, नरक लोकों से बताया है कि पापियों को क्या मिलेगा, और भी जहां पर ध्रुव लोकों की स्थिति है इत्यादि सप्तऋषि लोकों की स्थिति है, इन सब से सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं कि बोले जहां पर श्री प्रभु श्री भगवान अपनी एक मर्यादा में रहकर विभिन्न प्रकार के भक्तों का पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसको स्थान लीला वास्तविकता में कहा जाता है, वो स्थान लीला है पंचम स्कंद। तो पंचम स्कंद के अंदर जैसा मैंने छठा श्लोक का तात्पर्य पढ़ा, इसमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि भगवान की जो सत्ता है और जीव की जो सत्ता है, जो पोजीशन जो है, दोनों को जानना बहुत आवश्यक है। हम वास्तविकता में अपनी जो दासता का जो हमारा अभिमान है ना, उसको हम भूल गए हैं, इसी कारण से हमें जितनी समस्याएं सारी खड़ी होकर आ गई हमारे सामने। हम अपने आप को अगर ये मान लें कि व्यक्ति हम दास हैं भगवान के पूर्ण रूपेण, तो सारा का सारा जो झंझट है ये बार बार आने का और यहां से जाने का, ये खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि दास व्यक्ति बन गया, दास बन गया तो उसका कोई अपना अभिमान है नहीं, उसको बस एक बात पता है कि मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो ऋषभ देव ने इतना सुंदर ये प्रसंग है, प्रियव्रत महाराज के वंश में ही ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ है, और इन्होंने प्रकट होकर अपने पुत्रों को जब शिक्षा देना शुरू किया, नायम देहम देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते बड़ भुजाम ये, हाँ, तो अपने पुत्रों को ये बात बोल रहे हैं कि मेरे बेटों मेरे बच्चों ये बात देखो, महत सेवाम द्वारम आहुर विभक्ते, जो मुक्ति का जो द्वार है ना वो है साधु सेवा, और विषयों के साथ अगर पड़े रहोगे विषयों का संग करोगे तो सीधे नरक में चले जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनो जो मेरा उपदेश है, ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि हमेशा साधुओं की सेवा में लगे रहो और विषयों से दूर रहो, विषयों को बिल्कुल अपने से परे रखो। जितना हम विषय में जाएंगे ये मन की बात सुनेंगे, आप अगर पंचम स्कंद का पंचम अध्याय देखेंगे उसमें ऋषभदेव ने बहुत स्पष्ट बात बोली है कि अपने मन को किस प्रकार से आपको केंद्रित करके रखना पड़ेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो हमेशा मन के ऊपर निगरानी रखता है, क्योंकि मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इतना खतरनाक है। आपने थोड़ी सी ढील दे दी आपका सारा काम खराब कर देगा। इसलिए बड़े बड़े साधक लोग जो हैं इतने सावधान रहते हैं कि कहीं मन में ऐसी कोई बात ना आ जाए जिससे कि मेरा साधन खराब हो जाएगा। आप देखिए ऋषभदेव ने इस प्रकार का आचरण किया है कि मुख में पत्थर डाल लिए, तात्पर्य में लिखा हुआ है अनुवाद के अंदर, मुख में पत्थर डाल लिए, बाल बिखेर लिए, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। ऐसा आचरण उनको करने की आवश्यकता क्या थी? स्वयं भगवान है, भगवान राम भी आए हैं, उन्होंने ऐसा कोई आचरण नहीं किया, कृष्ण भी आए हैं ऐसा कोई आचरण नहीं किया, ऋषभदेव को ऐसा करने की क्या जरूरत है? एक प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे हैं मुख में पत्थर डालकर कि मन को इतना भी मौका मत दो कि ये वाणी की इंद्री जो है इसको ये इतना उत्तेजित कर दे कि मन मुख से ये बात भी निकल जाए कि अब मेरा मन कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, ये बात भी मुख से ना निकल जाए कभी। इसलिए मुख में पत्थर डाल के चुप हो गए, बिल्कुल बोलेंगे नहीं किसी से कुछ। ज्यादातर जो अच्छे भजन करने वाले हैं साधन करने वाले व्यक्ति हैं ज्यादा बोलते नहीं है, चुप रहते हैं बहुत। जब उनके मुख से आप सुनोगे या तो कृष्ण कथा सुनोगे या कृष्ण नाम सुनोगे, कीर्तन सुनोगे, अन्यथा फिर शांत रहेंगे और कोई बात नहीं बोलेंगे इसके अलावा। आप देखिए इसी परमहंस धर्म का जो ऋषभदेव ने वर्णन किया है, ये तो भगवान है, चलिए इनकी बात है ये कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है कि वो सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने करके दिखा दिया। परंतु हमारे लिए क्या व्यावहारिक है, हम इसको कैसे समझेंगे? भगवान तो कर सकते हैं लेकिन कोई जीव कोटि का व्यक्ति अगर ऐसा काम करके दिखाए तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत जल्दी ऊपर बढ़ जाता है। हमारी जैसे सामान्य में कोई अगर हो ऐसा, वो अगर ऐसा कुछ करके दिखाए कि हम भजन कर रहा है व्यक्ति बैठकर, उसको देखकर फिर हमारे अंदर उत्साह होता है। तो यही बात को और स्पष्ट करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जब इस धराधाम पे उतरे अपने अन्य पार्षदों के साथ, और उनमें से भी जो प्रमुख षड गोस्वामी जन है उनकी रहनी को देखिए, उनसे हमें और उत्साह मिल जाएगा कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से ढालना चाहिए। महाप्रभु ने बहुत एक विचित्र सोचने वाली बात है, इस वृंदावन में, ये जो वृंदावन जहां हम बैठे हुए हैं यहां पर स्थान दिया श्री रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी को, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को और शिलजीव गोस्वामी को। ये पांच गोस्वामी गण अपने अपने विग्रहों के साथ, अपनी भजन पद्धति के साथ जो कि बताई गई महाप्रभु के द्वारा, सब यहां पर विद्यमान है इस वृंदावन के अंदर। परंतु ध्यान से कभी ये विचार करिएगा कि दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को ये वृंदावन में स्थान न देकर 20 किलोमीटर दूर राधाकुंड में क्यों स्थापित किया? प्रश्न उठता है बहुत बड़ा ये कि सारे षड गोस्वामी इतने प्रिय महाप्रभु के, सबको एक साथ रहना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी अपने गोविंद देव के साथ यहां पर हैं, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री राधा रमण के साथ हैं, अन्य श्रील जीव गोस्वामी अपने श्री राधा दामोदर के साथ हैं, सब यहां पर बैठ के भजन कर रहे हैं अपना आनंद से। परंतु क्यों ऐसा है कि दास गोस्वामी को 20 किलोमीटर दूर श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि आपके लिए मैं एक अलग जगह देता हूं, वहां बैठो जाकर राधा कुंड में। इसका कारण है बहुत बड़ा। इसका कारण यह है कि जो ऋषभदेव समझाना चाह रहे हैं यहां पर, परमहंस धर्म, विरक्तों का धर्म क्या है, उस विरक्ति धर्म का पूर्ण रूपे निरूपण करने के लिए जो सबसे उच्चतम जगह है वो है राधा कुंड। गौड़ियों का सबसे प्रोमिनेंट स्थान है राधा कुंड। आपको वहां कोई निम्बार्की नहीं मिलेगा, कोई राधा वल्लभी नहीं मिलेगा वहां पर, कोई दूसरे संप्रदाय का मेल, किसी ने खोजा ही नहीं वो स्थान आज तक। पहली बात को खोजा ही स्वयं महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड को, और उसके बाद फिर सुपुर्द कर दिया किसके, दास गोस्वामी के, बोले आप यहां रहिए और आप वो भजन पद्धति जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर, श्री नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, उपदेशामृत के अंदर जो भजन पद्धति बताई है, आप इसको करके दिखाइए। यहां पर वैराग्यपूर्ण रहनी क्या होती है वो सीखना है तो दास गोस्वामी का चरित्र देखो। जो 22 घंटा बैठकर भजन कर रहा है व्यक्ति, सुबह से लेकर शाम तक 1000 प्रणाम भगवान को, 2000 प्रणाम वैष्णवों को, थक नहीं रहा, आनंद से बैठे हुए हैं वहां पर, आनंद से। दुनिया का उनको पता नहीं है बिल्कुल कि क्या जगत में बीत रहा है और कैसा विरक्त धर्म है। आपने महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में तो देख ही लिया उनको कि जो जगन्नाथपुरी में जो ठाकुर जी के लिए भोग बनता है, उसके बाद आनंद बाजार में आता है, आनंद बाजार में आने के बाद जब सब कुछ बिक जाता है, जो बच जाता है, जिनको पशु भी नहीं खाते हैं, उनको बीन बीन कर दास गोस्वामी अपना जीवन बिता रहे हैं। 22 घंटा माला कर रहे हैं बैठकर। आप एक बात सोचिएगा बहुत ध्यान से, अगर श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्त करना है ना, बहुत उत्कट वैराग्य की आवश्यकता है, बहुत उत्कट वैराग्य और अव्यर्थ कालत्वम, दोनों चीजों की आवश्यकता है बहुत। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है कि व्यक्ति एक सेकंड भी उसके दिमाग में श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरी बात आए ना, चित्त पे कृष्ण हमेशा चढ़े रहे पूरी तरीके से, और फिर नाम जप करे, कैसे नहीं उसके भजन के अंदर अनुभूति होगी, ये गारंटी की बात है, होगी। लेकिन हम आलस्य कर जाते हैं, आलस्य इतनी बड़ी हमारी दुविधा है जिसके कारण हमें प्राप्ति नहीं होती है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जो पद्धति दी है ना हमें गौड़िया संप्रदाय के थ्रू, श्रील रूप गोस्वामी को उन्होंने श्री चैतन्य मनोभिस्थम स्थापितम येन भूतले, श्रील रूप गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट जानते हैं। भगवान के मन में क्या चल रहा है ये किसी के जानने की बात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है किसी के अंदर, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उतर के आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनके हृदय की बात जानते हैं कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि नित्य परिकर है, नित्य परिकर है तो ये बात जानते हैं। आप राय रामानंद संवाद उठा के देखेंगे, हर जगह वह वहां पर एक ही बात लिखी हुई है, पूर्व रीते, पूर्व रीते, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ।
अरे पहले ऐसा हुआ का अर्थ ये है कि जो चैतन्य महापुर राधा कृष्ण मिलित विग्रह हैं और श्रील रूप गोस्वामी श्रील रूप मंजरी हैं, उन्होंने सारी की सारी लीलाएं अपने सामने देखी हैं, इसलिए ये बात वो जानते हैं कि महाप्रभु के हृदय में क्या चल रहा है। तो रूप गोस्वामी ने श्रील भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर जो तत्व बताए, जो सिद्धांत बताए, उनको कैसे व्यवहार के अंदर प्रकट रूप में करके दिखाना है, ये बात दास गोस्वामी ने करके दिखाई है। राधा कुंड पे आनंद से बैठकर भजन कर रहे हैं, हा? एक बार की बात है, और देखिए कैसी विरक्ति है। उनके चरित्र को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, एक डोना छाछ पीकर सिर्फ श्रीमती राधा रानी के चरणों में इतना अनुराग है कि उनको और कुछ चाहिए नहीं, उनको बस इतनी इच्छा है कि कब मुझे सेवा की प्राप्ति होगी, कब मेरा वो समय आएगा जब मैं प्रकट रूप में सेवा करूंगा। जीव का धर्म है ना, दास का अर्थ क्या होता है, दास का अर्थ है सेवा करना, तो उसके अंदर लालसा होनी चाहिए इस बात की कि मुझे कब सेवा मिलेगी प्रकट में जाकर। लेकिन उसके लिए यहां पर बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो कि आचार्य गणों ने करके दिखाया है। तो दास गोस्वामी एक डोला छाछ पीकर निरंतर भजन कर रहे हैं आनंद से। जब भजन करता है ना व्यक्ति एकांत में बैठकर खूब बड़िया से हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकांत में बैठकर जब बहुत तन्मयता से पुकारता है, जबकि मुझे सेवा की आवश्यकता है, आपके पास तो बहुत नित्य परिकर बैठे हैं, आपको भले ही जरूरत ना हो लेकिन मुझे आवश्यकता है क्योंकि मेरा कल्याण है उसके अंदर। तो ऐसे जब भजन करे साधक और श्रीमती राधा रानी को कृष्ण को, वो नाम अच्छा लगता है जो अश्रुओं से भीगा हुआ हो। जब अश्रुओं से भीगा नाम श्रीमती राधा रानी सुनती है ना, तो पिघलती है जाकर, इतना आसान नहीं है। वृषभानुनंदिनी को प्रसन्न कर लेना छोटी मोटी बात नहीं है, वो ईश्वरीय वृंदावनेश्वरी है, पर उनको प्रसन्न करना है तो करना क्या पड़ेगा, इन साधुओं के जैसे दास गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी, इनके तो पदकमल है, इन पर चलिए, वैराग्य को जीवन के अंदर लेकर आइए और माला में थोड़ा सा अपना अभिनिवेश बढ़ाइए, फिर देखिए धीरे धीरे जाकर, ये थोड़ा समय लेता है भक्ति का प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, थोड़ा समय लेगा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। नारद मुनि ने इतनी सुंदर बात कही है अपने स्वयं के भजन के बारे में, व्यासदेव इतने परेशान है कि 18 पुराणों का वर्णन कर दिया उन्होंने परंतु फिर भी उनको संतुष्टि नहीं है। जब व्यासदेव के सामने नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने, व्यासदेव ने नारद मुनि से यह पूछा है कि भगवान आप बताइए कि मेरी इस दुविधा का कारण क्या है। बोले सिंपल सा कारण है, बिल्कुल साधारण, ये कारण है कि आपने भगवत महिमा का कोई गुणानुवाद किया नहीं है। जो असली रस की चर्चा है श्रीमद् भागवतम, भागवती संहिता, शाश्वत संहिता, इसका तो आपने वर्णन ही नहीं किया। जब तक श्री कृष्ण रसानुस्वाद जो है श्री कृष्ण का, वो जीव के कर्णों में नहीं जाएगा, हृदय में जब तक नहीं उतरेगा, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। जड़ीय वस्तु, विषयी वस्तु जीव सुनता आ रहा है, देखता आ रहा है, वही उसने संसार हृदय में बसा रखा है। तो जिस संसार को, जड़ संसार को अगर हृदय में बसाएगा तो उसको हमेशा निराशा की प्राप्ति होगी। परंतु अगर इन्हीं कर्णों से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, इन्हीं कर्णों से जब कृष्ण की बहुत मधुराती मधुर लीलाओं का वर्णन वो सुनेगा, तो सुनिए सुनने के बाद क्या होगा, उसका हृदय अपने आप पिघल जाएगा। निवृत्त तर्षई उपगीय मानाम भवौषदात श्रोत्र मनोभिरामात, जो निवृत्त लोग हैं, जो इस जगत से मुक्त हो गए हैं, अरे वो भी श्री कृष्ण की कथा सुनकर उतर आते हैं नीचे। तो जो साधारण व्यक्ति है, जो भवौषदात, जिसका अभी पूरी तरीके से चित्त इस जगह से उठा नहीं है, वो सुनेगा तो उसका भी चित्त अपने आप भगवान की लीलाओं में आ जाएगा। निवृत्त तर्षई उपगीय मानाम भवौषदात श्रोत्र मनोभिरामात, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक के गुणानुवाद जब व्यक्ति सुनेगा तब तब जाके उसका वास्तविक कल्याण होने वाला है। तो नारद मुनि बोले कि भगवान वास्तविकता यह है कि आप भगवान के चरित्रों का गुणगान कीजिए, इसको करने से आपको परम शांति मिलेगी। तो व्यासदेव ने फिर बताया कि आप इतने उन्मत्त होकर जो आप इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, कैसे आप इस स्थिति तक पहुंचे हैं। तो नारद मुनि बोले कि भगवान देखिए, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जगत के अंदर जिनको मैं बता के आपको ये स्पष्ट कर सकता हूं कि ये पद्धति है, इसको पालन करो, आप श्री कृष्ण का चरण कमल प्राप्त कर जाओगे। परंतु जो मैं बताऊंगा आप बोलोगे सुनी सुनाई बातें हैं, परंतु इनको, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए मैं अपना स्वयं का चरित्र सुनाता हूं आपको, जो मेरे ऊपर बीती है ना वो मैं आपको सुनाता हूं। तब नारद मुनि ने अपने चरित्र के बारे में जब बताया कि किस प्रकार से भक्ति वेदांती उनके यहां पर आए और उन्होंने उन साधुओं की सेवा करना शुरू किया, उन्होंने एक बात देखी उन साधुओं के अंदर, वो ये कि वैसे तो उनके गांव में जहां पर भी वो उनकी माता दासी की पुत्र में वो जन्म लिए थे, जहां पर भी सेवा करती थी जिस भी ब्राह्मण के घर पर, तो वैसे तो उन्होंने देखा कि यहां के लोग इतनी मेहनत करते हैं, 2 जून की रोटी कमाना इनके लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। परंतु जैसी साधु लोग आए इनके घर पर, पता नहीं कहां से 4-5 लोग ऐसे साधु सेवी इकट्ठे हो गए, थोड़े समय में सीधा सामान भी आ गया और खूब बढ़िया जो है रबड़ी और मालपुआ घुट रहे हैं बैठकर, यानी कि इतनी आसानी के साथ ऐसे ऐसे व्यंजन जो कि साधारण व्यक्ति को देखने को नहीं मिलते वो वहां पर साधुओं के सामने प्रकट है। बिल्कुल योगक्षेम वहां में हमका प्रकट उदाहरण है कि भगवान कैसे अपने भक्तों का भरण पोषण कर लेते हैं आसानी से। तो उन्होंने लेकिन एक बात देखी कि इतना वैभव उनके सामने प्रकट हो गया है, परंतु उन साधुओं को उस वैभव के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर सुबह स्नान भी कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो बीच बीच में हरी बोल ये बोलते, इसका मतलब ये है कि कोई भी समय ऐसा नहीं जा रहा है उनका कि उनके मुख से हरिनाम नहीं निकल रहा है। ये बात देखकर नारद मुनि प्रभावित हुए उनसे बहुत कि इतना वैभव है इनके पास, परंतु इनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना किससे है, केवल भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से। जहां बैठते थे कुछ निवृत्त हो गए, कार्य से भोजन कर लिया, बैठ के क्या कर रहे हैं, हरि कथा करना शुरू कर दिए। नारद मुनि उस हरि कथा में बैठे आकर, जब उन साधुओं के मुख से उन्होंने इतनी सुंदर मधुराति मधुर भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना तो उनका चित्त जो है वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में आ गया, और उससे भी ज्यादा उन साधुओं के चरण कमलों में आ गया जिन्होंने कृष्ण को प्रदान किया। तो अब हुआ क्या कि साधु लोग वहां से जाने लगे तो बोले कि भगवान आप हमें छोड़िए मत, हमें भी साथ में लेकर चलिए। तो साधु लोग बोले देखो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा समय जरूर आएगा आगे चल के कि अभी तो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे नहीं होंगे, फिर क्या करोगे। तो बोले हम आपको एक मानक देकर जाते हैं, एक हैंडबुक देकर जाते हैं। बोले कौन सी हैंडबुक है, बोले ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में जो लिखा हुआ है उसका आचरण करना, उसका पालन करना, इससे एक भी शब्द अगर इधर उधर कोई बोले तो उसको मत मानना। इवन कि ब्रह्मा जी भी उतर के यहां पर आ जाएं और बोले कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, तो ब्रह्मा को छोड़ देना, श्रीमद् भागवतम को पकड़ लेना। श्रीमद् भागवतम महापुराण की इतनी महिमा है ये। तो नारद मुनि ने ऐसा ही किया। सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है कि अच्छा आपसे एक चीज पूछता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है कि पहले साधु संग आता है। अब देखिए श्री रूप गोस्वामी पाद तो भक्ति स्वामी सिंधु में यही वर्णन कर रहे हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति, है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। परंतु श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन, बोले पहले साधु संग आता है तब श्रद्धा बनती है, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे सीधा साधु संघ, जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में आप साधु संघ किए हो, पहले करके आए हो, पिछले जन्मों में करके आए होगे, तभी तो आपके अंदर इतनी श्रद्धा है। श्रद्धा पहले साधु संघ आएगा, फिर श्रद्धा बनेगी, फिर धीरे धीरे अनर्थ वृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति भाव और ऊपर तक जाएंगे। तो नारद मुनि अपना प्रसंग सुनाते हुए इस बात को बोले, बोले साधु संग मेरा हुआ जब, तब मेरे अंदर इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल। मैं रोने लग गया कि ये लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा फिर। परंतु उन्होंने सांत्वना दी कि श्रीमद् भागवतम को पकड़ के रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इस पद्धति से भजन करना। तो नारद मुनि जो पद्धति अपनाए भजन करने की, धीरे धीरे उनको जो मंत्र दिया गया, जब उसको जपते थे बैठकर, धीरे धीरे उनकी अनर्थ वृद्धि हुई, फिर निष्ठा की स्टेज में आए, फिर आसक्ति की स्टेज में आए, धीरे धीरे करते करते जब भाव की स्टेज में आ गए ना, जब भाव की स्टेज में, ऐसा वर्णन किया गया, बोले भाव की स्टेज में जब व्यक्ति आता है दशा में, तो कहीं ना कहीं उसको स्वप्न में कभी भगवान का दर्शन हो जाता है, भाव की अवस्था में हो जाता है। और यही भाव जब परिपक्व हो जाता है तो प्रेम का रूप ले लेता है। नारद मुनि वहां पर बात किए बहुत सुंदर, बोले जब मैं इस अवस्था में आया तो मुझे इतनी सुंदर अनुभूतियां और ऐसा मेरे अंदर विचित्र प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगे, इस बात का वर्णन विश्वनाथ चतुर्थीपाद ने माधुरी कादंबिनी के अंदर किया है। बोले कि जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में आता है ना, तो उसके अंदर छह प्रकार की मूर्छाओं का वर्णन होता है, छह प्रकार की मूर्छाएं उसके अंदर प्रकट हो जाती हैं। बोले कैसे, भजन कर रहा है साधक बैठकर, हाँ, उसको कहीं दूर पर एक बांसुरी सुनाई देगी, बांसुरी सुनते ही मूर्छित हो जाएगा श्री कृष्ण की, फिर दोबारा से जागृत होगा तो भगवान कभी आकर उसके सिर पे ऐसे बहुत धीरे से हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे। बोले स्पर्श प्राप्त करके मूर्छा को प्राप्त कर जाता है व्यक्ति, ये दो प्रकार की। फिर उसके बाद अपने मुख का चर्बित कभी तांबूल दे देंगे, हाँ, रसास्वादन करा देंगे, इससे मूर्छित हो जाता है। कभी कुछ शब्द सुना देंगे, कभी प्रत्यक्ष में आके दर्शन दे देंगे। तो अलग अलग प्रकार से पांच मूर्छाओं का तो वर्णन किया विश्वनाथ चतुर्थीपाद ने, और उसके बाद बोले जब पांच मूर्छाओं का वर्णन करने के बाद छह की छह मूर्छाओं को एक साथ रसास्वादन कराते हैं भगवान, शब्द रस रूप रस गंध, ये पांच हो गए ना, और दर्शन के साथ में छह की छह मूर्छाएं एक साथ रसास्वाद। सोचिए उस व्यक्ति के हृदय में क्या हो रहा होगा, उस आनंद में झूम जाए। महाप्रभु के साथ यही तो होता था, जहां हरि नाम सुने ने छह छह फीट ऊपर उछल गए, और जब नीचे गिरते हैं ऐसा लगता है अंग टूट जाएंगे। महाप्रभु इतने इतने अष्ट सात्विक विकार के अंदर इतना पूरी तरीके से भरे रहते थे। तो नारद मुनि ने इस बात का वर्णन किया, बोले जब मैं ऐसी अवस्था में आया तो ये सब मैं रसास्वादन कर रहा था। तो हमारे करने योग्य ये है कि नारद मुनि ने जो जो मार्ग अपनाया है, दास गोस्वामी पाद ने जो मार्ग अपनाया है, श्रील रूप गोस्वामी ने जो मार्ग अपनाया है, इनके पीछे महाजन येन गतः स पंथा, इनके पीछे अगर हम चलेंगे धैर्य पूर्वक, लेकिन धैर्य के साथ आप चलिए, माला अच्छे से करिए बैठकर, क्योंकि नाम में सब कुछ विद्यमान है, नाम में रूप भी है, नाम में गुण भी है, नाम में लीलाएं भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा के साथ करेंगे। यही श्रद्धा जो है जब आगे गाढ़ बन जाती है, यही प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। जितना ध्यानपूर्वक बैठकर माला करेंगे और प्रार्थना करेंगे साथ में कि भगवान आपके सेवा के बिना, आपकी दासता के बिना मेरी और कोई गति है नहीं, वास्तविकता मैं किसी ना किसी प्रकार से आ गया हूं इस जगत में। अब मुझे पता तो लग गया है कि मुझे वहां तक जाना है, आपके पास पहुंचना है, परंतु आप ही गाइड कीजिए। गाइड करेंगे ठाकुर जी, फिर ये भक्तों के माध्यम से जो शास्त्र दिए हैं इनके माध्यम से गाइड करेंगे फिर। लेकिन सिंसियर डिजायर हो ना किसी व्यक्ति की, बहुत आतुरता है उसके अंदर, तो देखिए फिर उसको अपने आप मार्ग मिलता है। नारद मुनि चाहते थे ऐसा कि मुझे ये चीज प्राप्त हो, तो उनको साधु भी मिले, उनको मार्ग भी मिला, उनको मंत्र भी मिला, उनको सिद्धि भी प्राप्त हुई। नारद मुनि भी बाद में बताते हैं, बोले मैं जब प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो गया, ये छह मूर्छाएं जब मुझे प्राप्त हुई, तो बोले छह मूर्छाओं में व्यक्ति को इतना आनंद होता है कि उसका पंच भौतिक शरीर कब छूट जाता है उसको पता नहीं लगता, इतने आनंद में होता है। बोले ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैं इन सब का रसास्वादन कर रहा था तो मेरा ये नारद मुनि वाला, मेरा जो दासी पुत्र वाला जो शरीर है ये कब छूट गया मुझे पता नहीं लगा, और मैं सीधा वैकुंठ में पार्षद बना जाके। परंतु फिर कृष्ण ने सोचा कि मेरा ऐसा भक्त जिसने इतना भजन किया है, जो सारा सिद्धांत जानता है, ये अगर दोबारा से इस पृथ्वी पर प्रकट होके इन जीवों का कल्याण करेगा तो कितना अच्छा होगा। तो फिर मेरे को श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की गोद से नारद मुनि के रूप में जन्म दिलवाया, और तब से मैं नारद मुनि के रूप में पूरे जगत के अंदर घूमता हुआ, राधिका रमण बजाए वीणा, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाम है। तो ये वीणा लेकर मैं हमेशा पूरे जगत में घूमता रहता हूं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ठाकुर जी भी भक्तों के लिए बजाते हैं, और भक्त तो बजाते ही हैं भक्त भगवान के लिए। तो बोले ऐसे विचरण करते हुए मैं एक बार ऐसे वृंदावन में आया तो मुझे वृंदा देवी का दर्शन हुआ। वृंदा देवी ने मुझसे कहा कि आप यहां पर जो नारदीय कुंड आपने सुना होगा यहां पर है ना, बोले आप यहां पर जाके तपस्या कीजिए और यहां पर इसमें स्नान कीजिएगा, तब आपको नारदीय गोपी के रूप में देह प्राप्त होगा। तो नारद मुनि ने तपस्या करके वहां स्नान किया, तब उनको नारदीय गोपी का स्वरूप प्राप्त हुआ, और तब उनको जाके रास का दर्शन हुआ। और रास में जब उनको उन्होंने राधे श्याम को देखा, वो माधुरी को देखा, रूप माधुरी को, तो अपने होश में नहीं है व्यक्ति। भगवान इतने सुंदर है कि व्यक्ति बिल्कुल अपने होश से बाहर निकल जाता है। और उस रास का दर्शन करके भगवान उनसे बहुत जब प्रसन्न हुए तो अपनी वीणा जो है वो नारद मुनि को प्रदान किए। तो ये जो वीणा है देवदत्ताम इमाम वीणाम, जो भागवतम में जो वर्णन किया गया है, ये वास्तविकता में रास में श्री कृष्ण ने नारद मुनि को प्रदान की है। और इसी वीणा को लेकर नारद मुनि पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमते हुए जीवों का प्राचीन बर ही हो, चाहे प्रचेता हो, चाहे जितने भी ध्रुव हो, प्रहलाद हो, इन सब का कल्याण करते करते आज तक विचरण कर रहे हैं। प्रार्थना करें इनसे, कहीं आपको भी दिख जाएंगे कभी। प्रार्थना करें, ऐसा भजन करें, अगर सिंसियर भजन हो ना, तो प्रभुपाद जी जैसे वर्णन करते हैं कि एक बार उन्होंने पास टाइम बताया कि बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे वहां पर, सब भक्त लोग सेवा में लगे हुए हैं, हाँ, और प्रभुपाद देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो बाद में प्रभुपाद ने पूछा, यू सॉ नारद मुनि केम। तो ऐसे साधुओं के लिए कोई दुर्लभ नहीं है इनका दर्शन करना, प्राप्त हो जाते हैं, परंतु हमें सिंसियर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि मैं आई एम कंप्लीटली इन यूनियन विद माई सुपर सोल, जो मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हैं उनके साथ मेरा पूरा यूनियन है, इसलिए इस जगत में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं तो भी मुझे यह है कि मैं वृंदावन में बैठा हूं। तो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना आई कैसे है उनके अंदर? ये आई है इस वैराग्य से, ये जो परमहंस धर्म का वर्णन ऋषभदेव ने किया है, और उत्कट भजन से, उत्कंठा होनी चाहिए जीव के अंदर। भजन तो कर रहा है, माला भी फेर रहा है, परंतु अगर उत्कंठा नहीं है ना तो आपको वो प्राप्त नहीं होगा। उत्कंठा भगवान की कृपा को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। उत्कंठा होनी चाहिए जीव के अंदर। आप भजन कीजिए बैठकर, और जैसे मैंने बताया इस चीज को कि प्रेम के साथ भजन कीजिए। अश्रु मिश्रित हरिनाम को लेकर अपने मुख से, वाणी से निकालिए। यह उत्कंठा जब आपके हृदय में आना शुरू हो जाएगी तो देखिए फिर आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। दास गोस्वामी पाद ने इसी बात को करके दिखाया है। राधा कुंड पे बैठकर जब 22 घंटा भजन करते हैं, एक बार की बात है, आनंद से बैठकर भजन कर रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं राधे श्याम की लीलाओं का, हाँ, तो एक डोना छाछ पी के तो पूरा जीवन निकाल देते थे, पूरा दिन निकाल देते थे। सब ब्रजवासियों को पता है कि बाबा एक डोना छाछ से ज्यादा कछु पीवे ना है, हाँ, सब ध्यान भी रखते हैं बहुत कि इनकी इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। बिल्कुल हुआ क्या, स्मरण कर रहे हैं तो वृषभानु नंदिनी एक बार आई, ये सब स्मरण में चल रहा है, और बोली बाबा से कि बाबा मैं खीर लाई हूं तेरे लिए, तू खा ले। तो दास गोस्वामी बोले कि हम तो एक डोना छाछ पीने वाले व्यक्ति, हम पे कहां खीर खबेगी। हाँ अब खीर खाएंगे तो अफरा आ जाए, वो अफरा जानते ना जिसे कहते लूज मोशन। तो बोले राधा रानी बोले कछु ना है रे वार, तू खा ले आराम से, मैं लेकर आई हूं। तो अब दास को स्वामी पाद कैसे मना करें, बोले वृषभानु नंदिनी अपने हाथ से कोई दे रही है आपको, कोई अगर दे दे, कोई बहुत बड़ा साधु ही कुछ हाथ से दे देता है, अगर हम कितना अपने आप को धन्य मानते हैं कि कोई साधु ने हमें कुछ दिया, यहां तो स्वयं ठकुरानी आकर दे रही है, कैसे मना करेंगे। तो अब एक डोना छाछ पिए वाले दास गोस्वामी, अब काउ तरीके से वो इतनी सुंदर चिंतामणि खीर है या वो खा तो गए, अब हुआ वही जो होना था, अफरा हो गया। अब सारे ब्रजवासी परेशान, बोले बाबा तो एक डोना छाछ पी के पूरा भजन करे बैठकर, हमने देखो ना है कहीं जावे यहां से, हाँ या अफरा कैसे है वो, कोई उन्हें कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात सुनते सुनते हल्ला पहुंचा रूप गोस्वामी पाद के पास, तो श्री रूप गोस्वामी भी आए, तो उन्होंने सब ब्रजवासियों को बोला थोड़ा ठीक है सब बाहर जाओ, हम बात करते हैं थोड़ा। तो श्री रूप गोस्वामी ने, अब श्री रूप गोस्वामी भी उसी स्तर के हैं जैसे दास गोस्वामी पाद हैं, तो ऐसा होता है कि अच्छे स्तर के जो साधक होते हैं, ये तो सिद्ध है वैसे, अच्छे स्तर के साधक होंगे तो एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है उनको पता लग जाता है कभी कभार। तो दास गोस्वामी के मन में क्या चल रहा था ये रूप गोस्वामी पाद जान गए, और अंदर अकेले में देखिए भजन ऐसी वस्तु है बिल्कुल निज जारवत गोपनीय होती है। मैंने ये बात देखी है बहुत, किसी से हम पूछ लेते हैं ना, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा माला करने लगता है तो पूछ ले अगर कि भजन कैसा चल रहा है आपका, कितनी माला कर रहे हैं, कि मैंने देखा है बहुत कि व्यक्ति फटाक से बता देता है कि मैं इतनी माला करता हूं। कोई अगर 32 माला 40 माला कर रहा हो ना, उससे पूछ लो, मैंने खुद पूछा है कईयों से, बता देते हैं एकदम से कि प्रभु जी 40 माला कर रहा हूं आजकल। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि जो भजन जो वस्तु है निज जारवत गोपनीय है। जार जानते हैं किसे कहते हैं, कोई एक स्त्री हो उसका किसी और व्यक्ति के साथ संबंध हो अपने पति के अलावा, पता नहीं लगने देगी पति को बिल्कुल भी, इस तरीके से काम करेगी, इतना जारवत गोपनीय भजन होता है। और यहां तो हम खुले में एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल छुपा के रखिए, जितना छुपाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना खोल देंगे सब खत्म हो जाएगा, इतनी सेंसिटिव वस्तु है भजन। तो रूप गोस्वामी पाद ने दास गोस्वामी से कहा, बोले कि रघुनाथ वृषभानु नंदिनी के हाथों की दी गई खीर का अकेले अकेले रसा स्वादन करोगे, हमें नहीं बताओगे कैसी थी। अब दास गोस्वामी तो एकदम विवल हो गए, बिल्कुल सर नीचे कर लिया, बोले बाबा आपसे क्या छुपाया जाए, आप तो सारी चीज जानते हो। तो देखिए इतना छुपा के भजन कर रहे हैं बिल्कुल, तब भी प्रकट हो रहा है, प्रकट तो इसलिए कर दिया इन साधुओं ने कि हमारे कल्याण के लिए, भैया तुम भी जान लो कि ये रस भी है कहीं पर, ये रस है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, अगर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो अनर्पित चिरम चिरात भक्ति जो है महाप्रभु देते ही नहीं बिल्कुल। और अगले कितने करोड़ों लाखों सालों तक महाप्रभु आएंगे नहीं देने के लिए, ये जो अब दे गए ना ये आएंगे नहीं देने के लिए, इसलिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। गौड़ियाओं के पास जो संपदा है ना, इसका कोई मैच नहीं है, कोई तुलना नहीं है इसकी, जो हमारे पास अवेलेबल है वो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसको पकड़ के रखिए, हमारे षड़ गोस्वामियों के चरण चिन्हों पर चलिए, इन्होंने जो करके दिखाया है थोड़ा सा भी प्राप्त कर लेंगे आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, ऐसी ऐसी अनुभूतियां हो जाएंगी। भक्त लोग बताते हैं इस बात को, जो करते हैं वो बताते हैं इस चीज को, जो सजातीय भक्त है ना उनके साथ बैठेंगे आप भजन करिए आपको सजातीय मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे करने वाले भजन, वो जब बताएंगे अपने अनुभव आपको, अनुभव सुन के ही इतनी प्रेरणा हो जाएगी कि मैं भी क्यों ना करूं ऐसा। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ये हमारे को प्लेटफॉर्म दे दिया जिस पर आकर पूरा जीवन आप यहीं रहिए, खूब बढ़िया से माला फेरिए खूब जितनी हो सकती है, वो भी वृंदावन धाम के अंदर। कहां जाएंगे, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है जिसका हर चीज 1000 गुना मिलता जाके, एक माला 1000 के बराबर है। पर उतना ही नुकसान भी है, अगर ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो उतना ही फिर आपको रिएक्शन भी लेना पड़ेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पकड़ के रखिए, दास गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद इनके ग्रंथों को और इनमें जो लिखा है उनको प्रयास कीजिए पालन करने का। शनै शनै देखिए, शनै श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्रद्धा धीरे धीरे रति में फिर अनुक्रमिष्यति भाव प्रेम तक पहुंच जाती है। पर थोड़ा धैर्य धारण करके हम इसको करेंगे तो हमें जरूर मिल जाएगा। ये श्री दास गोस्वामी पाद की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, श्रीमद् भागवत पुराण की, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मेरे से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा चाहूंगा। आप सब विनम्र वैष्णव मुझे क्षमा करेंगे।